राम महाभारत शांति पर्व कथा महंत श्री 1008 श्री क्षमाराम जी महाराज जी के मुखारविंद से राम
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। महाभारत के युद्ध के पश्चात शोकाकुल युधिष्ठिर जी को अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए सांत्वना देते हैं, उसमें नारद जी महाराज कर्ण के विषय में बता रहे थे। कर्ण की कथा बता रहे थे कि कर्ण क्या था। सब क्षत्रियों को युद्ध करते हुए कल्याण की अवस्था में देखने के लिए, इन सब को स्वर्ग में देखने के लिए देवताओं ने योजना बनाई। तब सूर्य भगवान ने कर्ण को कुंती के यहां भेजा। कर्ण विद्या के अंदर द्रोणाचार्य के पास आए और ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए पहुंचे। द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मैं तो या तो ब्राह्मण को बताऊंगा, या क्षत्रिय को बताऊंगा, या कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो तो बताऊंगा, तुमको तो नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम तो सूत पुत्र हो। क्योंकि अभी तक कर्ण को ये पता नहीं था कि मैं किसका बेटा हूं। तब वो परशुराम जी के पास महेंद्र पर्वत पर चला गया। इतनी कथा कल हो गई थी। परशुराम जी के पास जाकर उसने बड़ी नम्रता से उनके चरण छुए, बैठा। परशुराम जी ने पूछा हे वीरवर, तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, हमारे पास कैसे आए, इस महेंद्र पर्वत पर कैसे आए। उसने कहा महाराज मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूं। अच्छा बोलो मुझसे क्या काम है। मैं तुम्हारी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। अब ये परशुराम जी खुद भी भृगुवंशी थे तो कहा कि महाराज मैं इस पर्वत पर कुछ दिन तपस्या करके और आपके चित्त में प्रसन्नता पैदा कर आपसे ब्रह्मास्त्र सीखना चाहता हूं। तो बहुत अच्छी बात है, विशाल पर्वत है, आराम से तपस्या करो। अब वहां वो तपस्या करने बैठा तो खूब देवता लोग मिलने आते थे, राक्षस लोग मिलने आते थे, गंधर्व लोग मिलने आते थे। इस प्रकार वहां पर वो रहने लगा, तपस्या करने लगा, सबसे मिलने जुलने लगा तो सबका प्रिय बन गया। फिर उसके बाद गुरुजी के पास जाकर विधिवत शस्त्र का अभ्यास किया और जब वो अभ्यास करता था तो देवता लोग उसके पास आकर देखते थे और उसके बल पौरुष की बड़ी व्याख्या करते थे। ऐसे वो अभ्यास करते 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 एक दिन कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण था, उसकी गाय जा रही थी। उसने निशाना तो अपने लक्ष्य पर लगाया, इतने में ही वहां से कोई गाय आ गई तो बाण गाय के लग गया और वो थी कामधेनु, होमधेनु, यज्ञ की धेनु थी वो। कामधेनु नहीं, होमधेनु माने उसका घी, उसका गोबर, उसका गोमूत्र केवल यज्ञ में ही काम आता था, दूध घी वगैरह सब। वो होम धेनु थी और अग्निहोत्री ब्राह्मण। अग्निहोत्री ब्राह्मण कौन होते हैं, जिनके घर में हरदम अग्नि रहती है। अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना होती है और मरते हैं तब उनके शरीर को जलाने के लिए उस घर की आग को हांडी में लेकर के और जाते हैं और शवदाह करते हैं। नित प्रति उसके घर में भोजन बनता है तो उसी आग से लेकर वो भोजन बनाते हैं। तो गाय मर गई तो कर्ण गया उस ब्राह्मण के पास कि महाराज मुझे तो पता नहीं था, मैं मेरे शस्त्र का अभ्यास कर रहा था और अनजान के अंदर ही गाय मर गई। अब आपको मैं कैसे प्रसन्न कर सकूं, आप कैसे प्रसन्न होवे वो मुझे बताओ। आप जो चीज जिस चीज की मांग करें वो चीज ले आऊं। उसने कर्ण को फटकारते हुए कहा कि शस्त्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि इधर किसी और के शस्त्र न लग जाए, इतना सभी ध्यान नहीं रखता है और वो गाय जैसे पशु को मार दे और वो फिर ब्राह्मण की और उसको तुम किसी वस्तु से प्रसन्न करना चाहो, कभी संभव नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने अपना पाप अपने मुख से प्रकट कर दिया, इसलिए तत्काल मृत्यु का तो श्राप नहीं देता हूं, नहीं तो मैं कह देता कि तेरा अभी मृत्यु हो जाए, ये तो मैं नहीं कहता हूं। क्यों? तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धर्म का काम कर लेता है, बहुत बड़े पाप से बच भी जाता है। इसलिए मैं तत्काल मृत्यु का तो श्राप नहीं देता हूं, परंतु इस कर्म का फल ये होगा कि जिसके साथ तुम्हारे मन में डाह है और जिसको तुम युद्ध के अंदर मारना चाहते हो, जो तुम्हें अपना शत्रु दिखाई देता है, उसके साथ यदि तुम्हारा युद्ध होगा तो तुम्हारे भूमि का चक्का, तुम्हारे रथ का चक्का उस भूमि के अंदर फंस जाएगा, फिर तुम्हारा रथ आगे बढ़ नहीं सकेगा और तुम शत्रु से मारे जाओगे। तुमने गाय मारी, गाय बिचारी सावधान नहीं थी, तुम भी सावधान नहीं थे, तो तुम्हारी असावधानी पर ही वो तुम्हें बाण से मारेगा। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो भार्गव परशुराम जी के पास अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए दिव्य अस्त्र लेने के लिए आया था, थोड़े से अपराध से आप हमको इतना शाप दे रहे हो, उग्र शाप दे रहे हो, मैं आपको बहुत सी गायें दूंगा, पयस्वती गाय, पयस्वती माने खूब दूध देने वाली गाय, वो गायें दे दूं और उनके सींग और खुर सोने से मंडे हुए वो गायें दे दूं, इसके अलावा और आपको रत्नों का ढेर दे दूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उस ब्राह्मण ने फिर कहा कि ए बालक, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक ब्राह्मण का हृदय कितना निर्लोभी होता है। तुम चाहे हमको सारी पृथ्वी भी दान में दे दे तो भी मेरा शाप किसी प्रकार से टलने वाला नहीं है। वो बेचारा सिर नीचा किए हुए अंदर ही अंदर डरा हुआ होकर परशुराम जी के पास आ गया। कर्ण का बाहुबल तो देखो युधिष्ठिर आप जानते ही थे, उसने परशुराम जी महाराज की बहुत सेवा की और परशुराम जी महाराज उसके विनम्र व्यवहार से बड़े संतुष्ट हो गए। उसने परशुराम जी महाराज से कहा कि महाराज मुझे तो ब्रह्मास्त्र को चलाना और उसको समेटना, ये दोनों विद्या सिखा दो। तो कृष्णम धर्मास्त्रम ब्रह्मास्त्रम सनिवर्तनम, दोनों ही बात सिखा दी, ब्रह्मास्त्र को चलाना और वापस लेना दोनों बात सीख ली उसने। जब कर्ण को सब शस्त्र का ज्ञान हो गया तब वो फिर खूब धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। एक बार परशुराम जी महाराज खूब जंगल में खूब दूर दूर तक घूम के आए, कर्ण आगे गया, महाराज पधारिए विश्राम के, हाँ बेटा बहुत थक गया हूं, इस समय ऐसा भाव होता है कि हम सो जाएं। तो परशुराम जी महाराज सो गए, कर्ण ने अपना उत्संग था, गोद थी, उस गोद का सहारा दे दिया, जांग का सहारा दे दिया, उसके ऊपर सिर रख दिया और सो गए। उसी समय कीड़ा आया, वो विचित्र कीड़ा, ऐसा कीड़ा प्राय होता ही नहीं है, कीड़ा जो शरीर के अंदर खून पीता है, श्लेष्मा खाता है, मेद माने चर्बी खाता है और मांस खाता है, और मुझे दांत भी बड़े तीखे, पंजे भी बड़े तीखे, वो यूं यूं घूमता घूमता आया। सुअर जैसा उसका मुंह था लेकिन सुअर नहीं था। कर्ण भी उस कीड़े को देखा कि ऐसा कीड़ा कभी देखने सुनने में भी नहीं आया, और वो यूं यूं बड़ा तेजी से आ रहा था। वो आया और आकर के कर्ण के जंघा के ऊपर उसने चढ़ करके उसका खून पीना चालू किया, मांस खाना चालू किया। और उसकी मेद करते करते उसका ऊपर से चालू किया तो दूसरी तरफ छिद्र हो गया, ये ऐसे अंदर गया वो उसकी जांग में, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ। कर्ण ने देखा कि यदि मैं इस कीड़े से बचने के लिए जरा सा भी शरीर को हिलाऊंगा तो गुरु की निद्रा में बाधा पड़ जाएगी। कर्णस्तु वेदनाम धैर्याद असह्याम निगृह्यताम, उसने असह्य वेदना थी लेकिन पीता गया, इधर जो दर्द वे तू आंख बंद करे, आंसू आ गए, दांत भींच लिए, मुंह बंद रखा, अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाया डुलाया। लेकिन एक बात हुई कि वो खून बहता बहता परशुराम जी के शरीर में लग गया, वो गरम गरम खून था और एक बलवान का खून भी खूब मात्रा में आया, और ऐसे खून का प्रवाह सारे का वो चेत गए। ओहो अरे क्या, मेरे शरीर में खून लग गया, मेरा शरीर अपवित्र हो गया, क्या है ये खून कहां से आया, बोलो कर्ण बोलो क्या बात है, ठीक ठीक बताना, यथा तथ्यम, किसी प्रकार का भय मत रखना। कर्ण ने कहा महाराज कभी कभी कोई बात छिपानी भी चाहिए, नहीं गुरु की आज्ञा है कोई बात मत छिपाओ, बताओ क्या बात। क्या महाराज ये कीड़ा है, ये देखो ये कीड़ा है, ये मेरी जांग को खा करके इसको पार कर दिया, लेकिन आपको किसी प्रकार निद्रा में कष्ट ना हो इसलिए मैंने कोई चेष्टा नहीं की, कीड़े से बचने की चेष्टा नहीं की, आपको इसलिए नहीं बताना चाहता था कि इसमें मेरी प्रशंसा हो रही थी, इसलिए मैं आपको बताने में संकोच कर रहा था। ये देखो ये सुकर सन्निभम, सुवर जैसा ये कीड़ा है, अष्टपादम, आठ इसके ये पैर हैं, तीक्ष्ण दंष्ट्रम, ये देखो इसके मुंह से कैसे दांत निकले हुए हैं, सूचिभिरिव संवृतम, और सुई जैसी चुभने वाली इसकी रोमावली है। अलरकम नाम नामत है, शायद इसका नाम अलर्क हो सकता है, अलर्क नाम का एक कीड़ा कभी देखने सुनने में नहीं आया। परशुराम जी उस कीड़े के पास गए, आग खोल करके उस कीड़े को देखा तो परशुराम जी ने दृष्टि डाली, दृष्टि डालते ही वो कीड़ा वहां लटपटाने लग गया और वो कीड़ा अपना वो शरीर तो छोड़ दिया, उसमें से एक राक्षस कौड़ा करूटा पैदा हुआ कीड़े में से। राक्षसो लोहितक ग्रीव है, एकदम उसकी गर्दन खून से लथपथ, काला कलूटा मेघ के समान और बड़ा विशाल देह वाला। परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, आपने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे ये शाप मिला हुआ था और उस शाप के कारण से मुझे आज ये नरक योनि छूट गई। आपका कल्याण हो महाराज, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। परशुराम जी ने पूछा कि भाई मेरी दृष्टि पड़ने से तुम्हारा शरीर मर गया, तुम राक्षस के रूप में प्रकट हुए और इस नारकी शरीर में तुम कैसे आए, मैं तुमको जानता नहीं हूं, बताओ। तब उसने कहा कि महाराज बहुत पहले की बात है, सतयुग के अंदर एक दंश नाम का एक महान असुर का नाम सुना होगा, दंश, वो असुर मैं ही था। इधर आपके वंश में सबसे पहले ऋषि हुए भृगु, जिसके कारण से आप भार्गव कहलाते हो, उस काल के अंदर मेरा जन्म हुआ था, वो तो वे ब्रह्मा जी से भृगु, त्वचात भृगु, त्वचा भृगु, और मैं भी पैदा हुआ तो भृगु जी ने मुझे एक बार मैं कीड़ा होकर के और यूं घूम रहा था भृगु जी के पास, तो भृगु जी ने मुझे शाप दिया। अच्छा, मेरे सामने तू वेश बदल करके और कीड़ा बन करके और मुझे कष्ट पहुंचाने की सोचता है, अरे पापी, निर्यम प्रतिपत्स्य से जा, तो नरक के अंदर जाएगा। तूने माया से ये कीड़े का रूप दिया है, तो अब जा, मेरे शाप से तेरा कीड़े का रूप होगा। मैंने कहा महाराज, हम तो ओछी बुद्धि के हैं, ऐसी चंचलता करते ही रहते हैं, अब आपने मुझे शाप दिया है, इसका अंत कैसे होगा महाराज, मुझे कृपा करके बताओ। तब वो खुश हो गए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे ही वंश में आगे चलकर एक परशुराम जी होंगे, उनकी दृष्टि जब तुम्हारे पर पड़ेगी तो तुम अपने दैत्य रूप में आ जाओगे। आज महाराज बड़ी कृपा हो गई, परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। इधर परशुराम जी ने कर्ण से पूछा, कर्ण, ऐसा कीड़ा, मायावी कीड़ा, और वो किसी ब्राह्मण को खावे और ब्राह्मण कर रहवे नहीं, असंभव है, तू सच्ची सच्ची बता, तू किसका बेटा है, तू ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय से ही वते धैर्यम कामया सत्यम उच्यताम, सच्ची सच्ची बात बताना, तेरा आचरण क्षत्रिय जैसा है। तब उसने कहा, महाराज मैं आपको क्या कहूं, न तो मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो एक सूत कुल में पैदा होने वाला प्राणी हूं, मेरा नाम राधेय है, मुझे कर्ण भी बोलते हैं, राधेय है, कर्ण इति माम प्रवदंती। महाराज मैंने आपसे विद्या लेने के लिए असत्य भाषण किया, मैंने अपने आप को ब्राह्मण इसलिए भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो चीज होती है, एक तो शरीर होता है, एक ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान देने वाले गुरुजन होते हैं वो पिता से भी बढ़कर होते हैं। पिता तो केवल शरीर देने वाला होता है, लेकिन ज्ञान देने वाले तो गुरुलोग होते हैं। शरीर तो पशुओं को भी मिलता है, पर ज्ञान थोड़े ही मिलता है। इसलिए मैंने जब आपको अपना गुरु बनाया और आप जब भार्गव हैं, तो मैंने भी अपने आप को भार्गव वंश का बताया। इसलिए मुझे लगता है मैंने कोई अनुचित नहीं किया। आपको लगता है कि इसने झूठ कहा है। मैंने मेरे दृष्टि में शरीर की जाति छिपाई है, लेकिन आपको गुरु मान लिया और आपको मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया, तो आपकी जाति मेरी हो गई। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं गुरुदेव, मेरे व्यवहार से आपके चित्त में क्षोभ पैदा हो गया। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी का क्रोध शांत नहीं हुआ। यस्मान मिथ्योपचारितो यस्त्र लोभादिहत्वया, अरे जिससे तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो उसके सामने तुम झूठी बात बोलते हो और झूठ से विद्या लेना चाहते हो। मेरे प्रश्न का आशय तो यही था ना कि तुम किस जाति में पैदा हुए। मैंने उस समय ये नहीं कहा था कि तुम किस गुरु के पास आए हो, क्या ये नहीं कहा। मैंने कहा तुम किस जाति में आए, तो मैंने शरीर को लेकर प्रश्न किया और तुमने चालाकी से इसका उत्तर दिया। तो मूर्ख, ये ब्रह्मास्त्र जिसको मैंने तुम्हें दिया है, अन्यत्र वद कालाते सदृशेन समीयुषे है। जब तेरी मृत्यु आएगी उस समय ये ब्रह्मास्त्र तेरे काम ही नहीं आएगा। और समय काम आएगा, लेकिन मृत्यु अवस्था में तू ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगेगा, तू ब्रह्मास्त्र को भूल जाएगा। ये गुरु का शाप है। कारण गुरु की कृपा होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। शस्त्र से भी बड़ी गुरु कृपा होती है। तुमने ब्रह्मास्त्र तो सीख लिया, पर गुरु का कृपास्त्र तुमने नहीं लिया। अब ब्राह्मणे नहीं ब्रह्म ध्रुवम तिष्ठेत कदाचन है। जो ब्राह्मण नहीं है उसके पास ये ब्रह्मास्त्र स्थिर रह भी नहीं सकता है। अब तू यहां से चला जा। एक बार जब गुरु और शिष्य के बीच में कुछ अविश्वास का पर्दा आ जाए तो वहां पर तुमको नहीं रहना चाहिए। गच्छै इदानीं, तुम चले जाओ। पर इतना मैं जरूर आशीर्वाद में कहता हूं, न त्वया सदृशो युद्धे भविता क्षत्रियो भवि। इस युद्ध के अंदर क्षत्रिय भी तुम्हारे समान योद्धा नहीं होंगे, इतना तो बलवान और शूरवीर होगा। इस प्रकार से कर्ण वहां से रवाना हो गया और घूमता घामता कोई आश्रय लेता हुआ वो दुर्योधन के पास आ गया था। और दुर्योधन को उसने बताया कि मैं बहुत से शस्त्रों को जानता हूं। दुर्योधन को उसकी आवश्यकता थी और दुर्योधन के पास वो रहने लगा। एक बार की बात है, कलिंग देश का एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह स्वयंवर विधि से करना चाह रहा था। उस राजा का नाम था चित्रांगद और उसकी नगरी का नाम था राजपुर। राजपुर में देश देशांतर के सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने एक एक राजकुमार का यशोगान सुना, कब कौन सा देश क्या विद्या जानता है कैसे क्या, पूरा सब सुना। तो जो पसंद नहीं आया वो आगे चलते गए। चलते 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 जब दुर्योधन का नंबर आया, तब लोगों ने कहा कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं, ये बड़ा बड़े भारी गदाधर है, इनके समान गदा चलाने वाले बहुत कम कोई नहीं के बराबर ही होंगे। इतने बड़े गदाधर दुर्योधन आपके सामने विराजमान है, आप इनको अपना पति बनाने में सक्षम हो तो माला डाल दीजिए। उसने सिर हिला दिया, सिर हिला वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगी, पास में कर्ण बैठे हुए थे तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण इतने बड़े योद्धा होकर तुम मेरे साथ आए और ये राजकुमारी मुझे लांग कर किसी और को जयमाला पहनाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। आज अपने मित्र की लाज रखो और अपने बल पौरुष को दिखाओ, लोग भी जाने कि दुर्योधन का मित्र कर्ण कितना बलवान है। यहां देश देशांतर के सब लोग आए हुए हैं, इनके सामने पता चलना चाहिए। कर्ण का अच्छी बात है, वहां शिशुपाल भी थे, जरासंध थे, भीष्मक थे, वक्र थे, सब थे। तो एक एक का वर्णन सुनते सुनते दुर्योधन की बात आई तो हमने बोल ही दिया, वो जाने लगी। तब उस समय में दुर्योधन ने ये भी कहा कि देखो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा चित्रांगद का युद्ध होगा ना बाद में, हम डरते नहीं हैं, इस युद्ध से भी हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन सब हमारे पक्ष में रहेंगे। अर्जुन यद्यपि हमसे अलग हैं, लेकिन जिस समय चित्रांगद के साथ युद्ध होगा तो उस समय तो वो हमारे साथ ही रहेगा। तो कर्ण वहां खड़ा हुआ, खड़ा होकर सभा में जोर से कहने लगा, है कोई वीर, इसको हमारे हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन ले जा रहे हैं, और कोई वीर है तो सामने आओ, हमसे युद्ध करो और ये दुर्योधन इस राजकुमारी को ले जा रहा है, और किसी को यदि ले जाना हो, कोई युद्ध करना हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। दुर्योधन अपने आसन से खड़ा हुआ और उस राजकुमारी को हाथ पकड़ करके अपने रथ की ओर ले जाने लगा। कई राजा लोग खड़े हुए। अब कर्ण तो इतना फुर्ती से बाण चलाने वाला, अब इतनी फुर्ती से चारों तरफ उसने बाण चलाने चालू किए, कोई घायल हो गए, कोई मूर्छित हो गए, किसी का कान कट गया, किसी का हाथ कट गया, बहुतों के धनुष ही कट गए, किसी के घोड़े सारथी सब मारे गए। इस प्रकार से आज दुर्योधन की यहां विजय हो गई और उस विजय के साथ दुर्योधन उस राजकुमारी को लेकर अपने नगर में आ गया। आज कर्ण का सब राजाओं के पास में पहली बार अपने बल का पौरुष दिखाई दिया। इस बात से एक दिन जरासंध जल गया। जरासंध ने देखा कि संसार में मेरे से बड़ा तो कोई योद्धा होना ही नहीं चाहिए था। कृत बलम कर्णम श्रुत्वा राजा से मागद है, जरासंध ने सुना, देखा, सुनाई गया, देखा उसने, मन में समझ गया कि कर्ण से बड़ा तो कोई है नहीं, लेकिन मैं भी बलवान कम नहीं हूं। उसने एक दिन कर्ण से कहा, कर्ण मेरी तुम्हारे साथ युद्ध करने की इच्छा है, द्वैरथ युद्ध। असल में वो चाहता था जरासंध कि कर्ण को इस युद्ध के अंदर द्वैरथ युद्ध में मार दो, क्योंकि मेरे रहते हुए कोई संसार में बड़ा योद्धा होना नहीं चाहिए। यद्यपि वो दुर्योधन का पक्षपाती था जरासंध, लेकिन ईर्ष्या तो ईर्ष्या ही होती है ना युधिष्ठिर, मनुष्य को काल नहीं खाता, काल तो बेचारा सब चीजों को खाता है, इसलिए अपने शरीर को खावे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर सबसे ज्यादा मनुष्य का पतन करने वाली खाने वाली है तो ईर्ष्या होती है। जरासंध ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर कहा, आओ मुझसे युद्ध करो। इतना बड़ा शस्त्रास्त्र का ज्ञाता वो जरासंध भी कम नहीं और कर्ण भी कम नहीं। कर्ण ने कहा, जरासंध तुम तो एक बहुत बड़े योद्धा हो, मैं उदीयमान हूं, अभी तो मैं मेरी आयु भी छोटी है। छोटी आयु वाला तुम्हारे साथ युद्ध करे अच्छा नहीं लगेगा, यदि तुमको हरा देगा तो भी ठीक नहीं और तुम यदि उसको हरा दोगे तो भी ठीक नहीं, तुम्हारी इज्जत दोनों अवस्थाओं में जाएगी। जरासंध आप भी दुर्योधन के पक्षपाती हैं, मैं भी दुर्योधन का मित्र हूं, अपने आपस में युद्ध करना अच्छा नहीं है। जरासंध ने कहा, नहीं तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कायर घोषित करूंगा। कर्ण ने कहा, ये नहीं हो सकता, मर सकता हूं लेकिन कायर घोषित नहीं हो सकता। दोनों का खूब युद्ध हुआ। कर्ण ने बाहुकंटक युद्ध किया, बाहुकंटक ये भुजाओं को पकड़ करके करना, बाहुकंटक युद्ध नहीं आधा शरीर फाड़ देवे जैसा। तो दाव खेलते खेलते अब कर्ण को तो दाव के ही आते थे, उठा के जरासंध को पटक दिया और उसका पैर मोड़ करके यूं उसके दो टुकड़े करने ही वाला था। जरासंध ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जरासंध ने देखा, मैं मारा जाऊंगा इससे। तो जरासंध हंसने लग गया और प्रीतोस्म्यायो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। अरे मेरे मन में कोई बैर थोड़ा ही था, मैं तो तुम्हारा ये कौशल देखने के लिए, तुमको कुश्ती के कितने दाव आते हैं ये सब करने के लिए मैंने किया। और आओ देखो, आज से तुम और हम मित्र हैं, तुम भी दुर्योधन की पक्षपाती, हम भी दुर्योधन के पक्षपाती। तो उसने कहा, देखो भाई, हमारे पास एक देश है अंग देश, उस अंग देश में कोई राजा नहीं है, तो तुमने हमको बहुत अच्छा युद्ध कौशल दिखाया, हम तुमको वहां का राजा बना देते हैं। वहां की मालती नाम की एक नगरी थी, वो नगरी उसको दे दी और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार से दुर्योधन भी सहमत हो गया और वो कर्ण अंग देश का राजा कहलाने लगा। एवं शस्त्र प्रपातेन एवं शस्त्र प्रतापेन प्रथित सो अभवत क्षुत। इस प्रकार से संसार में उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। असल में कर्ण जब जन्मा था उस समय से इसके पास एक अभेद्य कवच था, उसके त्वचा के ऊपर ऐसा कवच सूर्य भगवान ने दिया, कोई भी शस्त्र उस त्वचा को भेद नहीं सकता था। भाला हो, तीर हो, तलवार हो, कोई भी क्यों न हो, त्वचा को भेद नहीं सकता था। और दिव्य कुंडल भी थे। तो हे महाराज युधिष्ठिर, एक बार अर्जुन को युद्ध में जिताने की भावना से इंद्र आए कर्ण के पास, ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, और वो दान देने में बहुत निपुण था कर्ण, कुछ भी मांग लो। तो ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः कुंत्याश्च वरदानेन माया च शतक्रतोः भीष्मावमानात् सांख्यायाम् रथस्यार्धानुकीर्तनात् शल्यात् तेजो वधात् चापि वासुदेव नयेन च। क्या क्या बतावें। वहां आकर के इंद्र ने उसको कवच इंद्र सब मांग लिए, लाओ तुम्हारी त्वचा देव। अरे ब्राह्मण, त्वचा क्या, त्वचा दी। त्वचा छील करके उसने अपनी चमड़ी उतार करके ब्राह्मण को दे दी, कुंडल देव कुंडल दे दिया। लेने के बाद उसने कहा कि देखो कर्ण, तुम्हारे मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि ब्राह्मण लोग कभी शरीर का मांस भी लेते हैं, त्वचा भी लेते हैं, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं इंद्र हूं। तुमने हमको ये कवच दे दिया और कुंडल दे दिया, हम तुमको एक अमोघ शक्ति देते हैं, जिसके ऊपर भी ये चलाओगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। वो बड़ा खुश हो गया, ये शक्ति वाह वाह, ये तो मुझे अर्जुन पर चलानी है। उसके मन में कोई विचार नहीं आया। इधर भगवान वासुदेव की नीति थी और उन्होंने उस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया और वो शक्ति वहां काम आ गई, तब जो है वो कर्ण मारा गया। तो कर्ण के मरने में कई कारण थे, उसमें ब्राह्मण का तो सांप मैंने आपको बताया ही, परशुराम जी ने भी सांप दिया और कुंती का भी वरदान कि मेरे चार भाई, तुम्हारे चार भाई सुरक्षित रहेंगे, या मैं मर जाऊंगा तो अर्जुन और अर्जुन मर जाएगा तो मैं, ऐसे तुम्हारे पांच के पांच रहेंगे। भीष्म पितामह भी उनको कभी कभी अपमानित करते थे, भीष्म पितामह ने उनको कभी भी रथी नहीं कहा, अधिरथी कहा, अधिरथी रथस्यार्धानु कीर्तनात् ए अर्धरथी। वो कहता था कि ये भीष्म कितना बुढ़ा हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, मैं इतना बड़ा योद्धा और मुझे अधिरथी बोलता है, मैं पूर्ण रथी हूं, महारथी हूं। वो कहते ना ये अधिरथी है। भगवान ने कहा देखो कर्ण, तुम्हारी सेना में तुम्हारा ही अपमान होता है, क्या इस प्रकार से तुम भीष्म से अपमानित होकर युद्ध करोगे? नहीं करूंगा, जब तक ये बुढ़ा रहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, ऐसे भगवान की नीतियों के अनुसार वासुदेव नयन से और शल्या तेजो वधात चापी, और शल्य थे मामा, शल्य थे मामा, थे नकुल सहदेव के एक माद्री के भाई, थे माद्री के भाई, और ये आए थे पांडवों के पक्ष में, बहुत बड़ी सेना लेकर आए थे। दुर्योधन ने देखा कि कैसे इनको अपने पक्ष में किया जाए, वहां पर बहुत अच्छा बीच में प्रबंध करवाया, मार्ग में खूब आराम का प्रबंध कराने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारे पुत्र युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा प्रबंध करवाया है, हम तो इस प्रबंध के कारण से इतने युधिष्ठिर पर प्रसन्न हो गए कि हम इस सत्कार के द्वारा उसी के पक्ष में ही युद्ध करेंगे जिन्होंने हमारा ये व्यवस्था की है। तब कहा कि महाराज ये तो दुर्योधन ने की है, ओह मैंने तो वचन दे दिया, अब क्या करें। तो शल्य गए पांडवों के पास कि भाई मैं आया तो था तुम्हारे पक्ष में, वरदान निकल गया, उधर क्या करना चाहिए, तुमको एक वरदान दे सकता हूं मैं, क्या मांगे है? भगवान ने कहा हे शल्य महाराज, आप युधिष्ठिर का उत्साह, ये कर्ण का उत्साह भंग करते रहना, कर्ण बहुत बड़ा मानी है, घमंडी है, घमंडी आदमी को कहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, उसका दिल टूट जाता है। तो आप कर्ण के जो है रथी बना हुआ, रथ के सारथी बने हैं, कर्ण के सारथी बनकर के और युद्ध करना, तो कहा ठीक है कृष्ण, इतना बड़ा मैं योद्धार सारथी कोई बात नहीं, कर्ण का ही सारथी बनना है ठीक। इधर पिता में भीष्म जी सब युद्ध से अलग हो गए, कहीं मारे गए, कोई क्या हुआ, तो कर्ण का नंबर आया, सेनापति कर्ण बना, कर्ण ने कहा कि अर्जुन के पास जैसा सारथी ऐसा मेरे पास सारथी नहीं है, यदि ऐसा सारथी हो तो मैं कर्ण को बता सकता हूं। तो फिर शल्य वो सारथी बने और अर्जुन का बाण आता, अरे वाह क्या बाण मारा है अर्जुन ने, वाह अर्जुन वाह, क्या आप सारथी होकर अर्जुन की पना, मुझे अर्जुन से मतलब नहीं है, मैं वीरता देखता हूं। और जब ये कर्ण बाण मारा, अच्छा नहीं लगा है, तुम्हारे जैसा वीर होकर ऐसे कमजोर बाण चलाता है कर्ण, ऐसा मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा सारथी नहीं होता। कर्ण कहते हैं कि शल्य महाराज आप अपने आप को राजा मानकर बात मत कीजिए, आप एक सारथी हैं, मैं रथी हूं, आपका कर्तव्य मेरा उत्साह बढ़ाने का होता है, आप मेरा उत्साह क्यों घटाते हैं। शल्य ने कहा कि मैं तुम्हारा सारथी हूं तो सारथी को सब कुछ बोलने का अधिकार है। ऐसे इन दोनों में टचरे होती रही और फिर वो बाण लगाए, फिर भी तो कुछ नहीं है, ऐसा बाण तुम्हारी जैसी विद्या लिया हूं और ऐसा बाण छोड़ता है, देख बाण तो वो आ रहा है, वो देख वो कैसा सनसनाता बाण आया है, ये है बाण। ऐसी इतनी अर्जुन की प्रशंसा करते आखिर कर्ण बहुत दुखी हो गया। कर्ण तो शल्या तेजो वधाचापी, शल्य के द्वारा जब उसका तेज का बार बार अपमान होने लगा और वासुदेव नये नचर, भगवान की नीतियां भी ऐसी काम कर रही थी, भगवान शंकर का भी शाप इधर जो है वरदान था अर्जुन को, रुद्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च कुबेर द्रोणयोश्चैव कृपस्य च महात्मने, सबका आशीर्वाद था, इस कारण से कर्ण का वध हो गया। इसलिए तुम्हारे भाई कर्ण को जो शाप मिला था वो तो पीछे से बनी बनाई योजना थी, आपको हे महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे और युधिष्ठिर जी महाराज सोचते सोचते इतने दुखी हो गए कि युधिष्ठिर जी के आंखों से जो आंसू गिरते थे उससे कुंती माता भी बड़ी दुखी हो गई, वहीं बैठी हुई थी। कुंती माता ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर जो होना सा सो हो गया, जीने वाले जिए मरने वाले मर गए, इसमें शोक क्या अर्थ रखता होगा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो बेटा, तुम्हारे मुख से तो कभी अधर्म की बात निकली ही नहीं है। मैंने कर्ण को ये बताने का प्रयास किया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं और एक बार भगवान भास्कर ने भी उनको यही बात कही थी कि बेटा तुम कुंती के बेटा हो। जो कुछ कहना चाहिए था वो सब भगवान सूर्य ने स्वप्न के अंदर उसको बताया था, साक्षात नहीं स्वप्न में, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारे सामने इस सत्यता को इसलिए प्रकट नहीं किया कि तुम्हारे अंदर भेदभाव हो जाता कि वो कर्ण अलग है और हम अलग हैं, ये भेदभाव हो जाता। हम दोनों ने आपका मेल नहीं करवाया, ये हमारी बात को सोच समझ करके की गई थी कि कर्ण उस समय यदि होगा तुम्हारे अंदर भेदभाव हो जाएगा। इधर कर्ण इतना तुमसे दूर हो गया, उसका बैर बढ़ता गया और उसके बैर बढ़ने का लाभ दुर्योधन को मिला, लेकिन ये सब बातें बीत गई युधिष्ठिर, अब बीती हुई बात के लिए इतना शोक करने की जरूरत क्या है। इत्युक्तो जब धर्मराज युधिष्ठिर से ये बात कही गई तो ये धर्म कुंती माता की बात सुनकर के बड़ा ही दुखी होकर के कहने लगा, भवत्याः गूढ़ मंत्रत्वात्, आपने जो इतने दिन तक हमसे ये बात छिपाई, इस छिपाने का आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है और आज के बाद मैं दुखी होकर के आपको ये श्राप देता हूँ, आप ही को नहीं सारे स्त्रियों को श्राप देता हूँ, न गुयम धारी शंति इत्येवं दुख समन्वित है। स्त्रियां कभी भी किसी भी गुप्त बात को धारण कर ही नहीं सकेंगी, पचा ही नहीं सकेंगी, इसलिए अब आपके पास कोई बात छिपी हुई नहीं रह पाएगी। आपने छिपा लिया तो कितना कष्ट हुआ है, अब नहीं छिपेगी बात। बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, अर्जुन सुनो, अब मेरा यहां रहने का कभी विचार नहीं है, मैं यहां से निकल जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा। कितना अच्छा होता युद्ध से पहले हम लोग द्वारिका चले जाते और द्वारिका की गलियों में भिक्षा मांग मांग करके हम निर्वाह करते, तो कोई ये हमारे लोग मरते नहीं, न कर्ण मरते न और मरते, हमारा ही तो वंश मरा, कितनी बड़ी हमारी दुर्गति होगी। आज हमारे शत्रु कितने प्रसन्न हो रहे होंगे अर्जुन, कि बड़ा अच्छा हुआ ये लोग मारे गए, पांडवों का वंश कम हो गया, कुरुवंश कम हो गया, हमने देखो क्या अच्छा किया, इसमें हमारा वंश भी खत्म हो गया और हमारा धर्म का फल था वो भी समाप्त हो गया और हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, धिक्कार हमारे क्षात्र धर्म को, बल पौरुष को। अरे मनुष्य की शोभा तो क्षमा से होती है, इंद्रियों का संयमन करने से होती है, मन की और शरीर की पवित्रता से होती है, वैराग्य से होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखा जाए इससे होती है, अहिंसा से होती है, सत्य वचन से होती है। और मैं वन में रहूंगा तो ये चीजें मेरे अंदर अपने आप पैदा हो जाएंगी। हमने तो देखो राज्य के लोभ से, मोह से, मान से, दंभ से कितना बड़ा पाप कर लिया। त्रैलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान् कश्चित् प्रहर्षयेत्। अरे पृथ्वी के ऊपर यदि हमको त्रिलोकी का पूरा राज्य मिल जाए तो भी भाई, हमने तो हमारे भाई बंधुओं के बिना उनको मार करके राज्य लिया, ये शोक कैसे दूर हो सकता है। पृथ्वी के लिए अवध्य राजाओं की विचारों की हत्या कर दी, हमारे ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी, जैसे कुत्ता मांस के ऊपर लपकने के लिए कितनी दूर से आता है और वो आगे पीछे का कोई विचार न करके मांस पर टूट पड़ता है, ऐसी हमारी राज्य के ऊपर घृणित दृष्टि रही, उस कुत्ते जैसी हमारी वृत्ति रही। अर्जुन अभी भी अपन संभलते नहीं है। अरे भाई सारी पृथ्वी मिल जाए, सब राशि राशि सोना मिल जाए, गायें घोड़े सब हमको मिल जाए, तो भी भाई जो हमारे आत्मी लोग युद्ध में मारे गए तो मर ही गए ना, त्याज्या ये इमे हता, वो मारे गए तो मारे ही गए। जो आदमी काम और क्रोध के वशीभूत होते हैं वे लोग बार बार क्रोध और हर्ष को प्राप्त होते हैं, अंत में वे मृत्यु रूपी रथ में बैठकर यमराज के घर में जाया करते हैं अर्जुन। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमारे अच्छे बेटा होंगे, वे बेटे बड़े सत्कर्मी होंगे, वे हमारे सामने या अच्छे कर्म करेंगे और हमारे मरने के बाद वे हमारे लिए पिंडदान करेंगे, इसके लिए माताएं उपवास करती हैं, व्रत करती हैं और 10 मास तक बच्चे को पेट में धारण करती हैं। उनके अंदर बार बार ये संकल्प पैदा होता है कि कि हर प्रकार से हमारी संतानें ऐसी होंगी, वैसा काम करेंगी, परंतु उन माताओं का संकल्प धरा ही रह गया और वो छोटे छोटे 16-17-18 वर्ष के बच्चे हमारे सामने आए और मारे गए। वो बिचारी माताएं कितनी रो रही होंगी, उनके पितर कितने कष्ट पा रहे होंगे। इसलिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि बड़ा भयंकर हमसे काम हुआ, ये युद्ध बहुत बुरा हुआ। पांचाला नाम कुरुणांचय हताए भी ये हता है। पांचालों में, कुरुवंश में जो मर गए वो मर ही गए। अरे वे बिचारे अपने पुरुषार्थ से आज क्या क्या कर लेते, वो सब बिचारे धरे ही रह गए। हम लोगों ने यद्यपि कभी किसी की बुराई नहीं की और इस युद्ध के अंदर केवल हम ही दोषी हूं ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, धृतराष्ट्र जी इसमें खास कारण थे। धृतराष्ट्र जी भी अपने पुत्रों का पक्ष नहीं लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन आज धृतराष्ट्र को भी क्या मिला, 100-100 पुत्र उसके भी चले गए, क्या मिला इस युद्ध से। किसी की भी कामना सफल नहीं हुई। बड़े बड़े विद्वान मंत्री लोग थे, बड़े बड़े सलाहकार थे, सब इस युद्ध के अंदर मारे गए। धृतराष्ट्र है नृपति सौबलेन निवेदित है, और धृतराष्ट्र भी शकुनी के द्वारा बार बार प्रेरित होते रहते थे। अनपेक्षैव पितरम गांगेयम विदुरम तथा, पितामह गंगा नंदन भीष्म को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा धृतराष्ट्र ने, विदुर जी की भी नीतियां वहां फैल हो गई। ऐसी स्थिति में किसको क्या मिला, और दुर्योधन सबको शोक की अग्नि में झोंक करके चला गया। हम लोगों की संसार के अंदर कितनी प्रतिष्ठा थी धर्म के नाम पर, वो भी हमने समाप्त कर दी। अवध्यों का वध किया, इसलिए सब पापों का प्रायश्चित एक ही है कि हम वन में जाएंगे, वन में रहेंगे, और वन में रहकर जैसा हमारा तपस्वी का जीवन होगा उस तपस्वी जीवन के अनुसार ही हम जिएंगे। कोई परिग्रह नहीं रखेंगे, कोई हमारे जीने की सामग्री साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस आदमी के पास परिग्रह होता है वह आराधना से चित हो जाता है। उसकी भगवान में आराधना नहीं हो सकती, उसका धन में और जिसका वो परिग्रह करता है उस परिग्रह में उसका मन जाया करता है। इसलिए गमिष्यामि विनिर्मुक्तो विशोको निर्ममः क्वचित्, सबसे एकदम ममता हटाकर मैं वन में ही रहूंगा। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने जो बात कही, उस बात को सुनने के बाद अब अर्जुन आगे बोलते हैं। अब अर्जुन यही बोलेंगे कि आपको वन में नहीं जाना है, फिर युधिष्ठिर कहेंगे कि नहीं मैं तो वन में जाऊंगा। खूब अच्छा सा, सब ऋषि मुनि बैठे सुन रहे हैं वहां। ऋषि मुनि दोनों की धर्म की बात है, वो अपने धर्म की बात कहते हैं, ये अपने धर्म की बात बोलते हैं। और ऋषि मुनियों को बड़ा आनंद का अनुभव होगा कि देखो कैसी धर्म की बातें हो रही है। ऋषि मुनियों के द्वारा ये निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें किसकी बात का हम पक्ष लें, चारों तरफ धर्म की बातें आ रही हूं, किसका पक्ष दें, किसको कमजोर बताएं। बड़ा सुंदर संवाद है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वारे की अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।